नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन पर बात करने वाले हैं।
जी,
ये अखंड ज्योति पत्रिका में प्रकाशित हुआ था और इसका शीर्षक है अपने ब्राह्मण और संत को जिंदा कीजिए।
जी,
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आह्वान है उनका।
हाँ,
तो हमारा उद्देश्य यही समझना है कि पूज्य गुरुदेव के लिए ब्राह्मण और संत होने का मतलब असली मतलब क्या था, और ये जिंदा करने वाली बात क्यों। हम उनके जीवन के प्रयोगों को भी देखेंगे और ये भी कि वो आम लोगों से क्या चाहते थे।
बिल्कुल, और ये जो उद्बोधन है ना, ये कोई किताबी बात नहीं है, ये उनके खुद के जीवन, उनकी साधना, उनके गहरे अनुभवों का एक तरह से सार है।
वो इसमें सादगी पर, आत्म अनुशासन पर और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने पर बहुत बल देते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पहले ये सब खुद जिया।
अच्छा,
तो फिर शुरू करते हैं ब्राह्मण से। पूज्य गुरुदेव की नजर में ब्राह्मण कौन था, क्या मतलब था उनका?
हाँ, देखिए, उनके लिए ब्राह्मण का मतलब सिर्फ जन्म से नहीं था। वो कहते थे ब्राह्मण जीवन यानी किफायत सारी, मतलब अपनी जरूरतें कम से कम रखना, और जो भी अपनी क्षमता है, पैसा हो, बुद्धि हो या फिर मेहनत करने की ताकत, उसको ज्यादा से ज्यादा समाज के लिए लगाना। अपना पेट भरने से ज्यादा जरूरी है समाज का भला।
अच्छा, यानी कम में गुजारा करना और जो बचे वो समाज को देना।
बिल्कुल, और उन्होंने खुद करके दिखाया। ये आपको पता है, अपनी पूरी पैतृक जमीन उन्होंने गायत्री तपोभूमि के लिए दान कर दी। पूजनीय माता जी, उनकी पत्नी, उन्होंने अपने सारे गहने दे दिए थे उस काम के लिए। जो भी पैसा उनके पास आता था, वो उसे तुरंत परमार्थ में, मतलब दूसरों की भलाई में लगा देते थे।
वाकई ये तो बहुत बड़ा उदाहरण है।
हाँ, वो साफ कहते थे कि असली शक्ति पैसे या ताकत में नहीं है, असली शक्ति तो ब्राह्मण वाले गुणों में है, त्याग, सादगी, ज्ञान और समाज सेवा। आज के समय में जहां वो कहते थे कि बस पैसा कमाने और जोड़ने की सोच, जिसे वो बनिया वृत्ति कहते थे, वो हावी है, वहां ये ब्राह्मण वाला आदर्श और भी जरूरी हो जाता है।
सही कहा, ये तो हुई ब्राह्मण की बात। अब उनका जो दूसरा प्रयोग था, साधु या तपस्वी बनने का, इसमें तपस्या का मतलब क्या था? क्या सिर्फ जैसे हम सोचते हैं कठिन शारीरिक कष्ट सहना?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो बाहरी तपस्या को मना नहीं करते थे, पर उनका जोर उस पर नहीं था। उनके लिए तप का असली मतलब था खुद को तपाना, अंदर से, खासकर अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, इंद्रियों को काबू में करना, उनको अनुशासित करना, ये था असली तप।
तो उन्होंने खुद किस तरह का तप किया?
अरे, उन्होंने बहुत कठोर तप किए, जैसे अनुष्ठान के समय सिर्फ जौ की रोटी और छाछ पर महीनों रहना। लेकिन उनका तप सिर्फ अपने लिए नहीं था, वो समाज के लिए था। जैसे दान में अगर 125 रुपया भी मिला, या मान लीजिए 200 रुपये मिले, तो वो तुरंत या तो किसी जरूरतमंद को दे देते थे, या फिर किसी सामाजिक काम में, जैसे कोई धर्मशाला बन रही है या मंदिर बन रहा है, उसमें लगा देते थे।
अच्छा, यानी तपस्या भी लोक कल्याण के लिए?
जी हाँ, उनका मानना था कि तपस्वी को कठोर होना चाहिए अपने लिए, पर संत का दिल करुणा से भरा होना चाहिए। तप अपने ऊपर नियंत्रण के लिए और करुणा दूसरों के लिए, दोनों साथ साथ।
ये बात तो बहुत गहरी है। अच्छा, एक और बात, पूज्य गुरुदेव ने तो हजारों, शायद लाखों व्याख्यान दिए होंगे जीवन भर, लेकिन फिर एक समय आया जब उन्होंने ये बोलना, मतलब वैखरी वाणी का प्रयोग कम कर दिया। ऐसा क्यों? क्या उन्हें निराशा हुई कि लोग अमल नहीं कर रहे?
हाँ, ये एक बड़ा कारण था। उन्हें दुख होता था कि लोग सुनते तो हैं, पर जीवन में उतारते नहीं, सिद्धांत बस सुनने के लिए रह गए। लेकिन एक और शायद ज्यादा बड़ा कारण था, वो अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते थे। वाणी संयम करके वो उस ऊर्जा को सूक्ष्म स्तर पर लगाना चाहते थे।
सूक्ष्म स्तर पर मतलब?
मतलब जिसे वो पश्यंती या मध्यमा वाणी कहते थे, बिना बोले विचारों के स्तर पर मौन रहकर मार्गदर्शन करना, जैसे श्री अरविंद ने किया या महर्षि रमण ने। इससे वो वातावरण में एक आध्यात्मिक स्पंदन पैदा करना चाहते थे जो शब्दों से ज्यादा गहरा असर करे। ये भी उनकी करुणा का ही एक रूप था, जैसे प्याऊ लगाना या छोटा सा दवाखाना चलाना, ये सब सेवा और करुणा के ही काम थे, पर वो चाहते थे कि ये व्यक्तिगत न होकर सामाजिक हो।
ये भी दिलचस्प है कि वो सिर्फ बाहरी पूजा पाठ या कर्म कांडों की, खासकर जो सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हो, उसकी आलोचना भी करते थे। यहाँ तक कि शक्तिपीठों में जो अहंकार और झगड़े होते थे, उस पर भी उन्होंने चिंता जताई थी।
बिल्कुल, उनका जोर हमेशा मौलिक सिद्धांतों पर रहा, नैतिकता, सेवा, आत्मसुधार, वो कर्मकांड या जिसे वो कभी कभी मजाक में जादूगरी कह देते थे, उससे बहुत आगे की बात करते थे। उनका मेन संदेश था अपने आप को निचोड़ो, मतलब अपना बेस्ट दो, अपना समय, अपनी मेहनत, अपना पैसा, अपने विचार, अपनी जो भी प्रतिभा है, सब कुछ समाज और संस्कृति को बेहतर बनाने में लगाओ।
अपने आप को निचोड़ो, ये बहुत शक्तिशाली बात है।
हाँ, वो कहते थे कि उनके विचारों की आग को फैलाओ, उसे बुझने मत दो। असली पूजा यही है कि हम अपने अंदर ब्राह्मण और संत वाले गुण जगाएं। माला फेरना या अगरबत्ती जलाना काफी नहीं है।
हाँ।
तो अगर सार में कहें तो ये उद्बोधन एक तरह से अंदरूनी बदलाव का बुलावा है। सच्ची आध्यात्मिकता बाहर के दिखावे में नहीं है, वो है ब्राह्मण बनने में, यानी सादगी और समाज की सेवा में, और संत बनने में, यानी आत्म अनुशासन और करुणा में। इनको जीवन में उतारना ही असली धर्म है।
और ये बात हमें आज के लिए एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। आज का जो जमाना है, जहां हर कोई अपने बारे में सोचता है, चीजें इकट्ठी करने में लगा है, ऐसे में कोई अपने अंदर के उस ब्राह्मण और संत को कैसे जगाए? पूज्य गुरुदेव के ये विचार आज भी कितने काम के हैं और हम इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं, ये सोचने वाली बात है हम सबके लिए। ओम शांति।